प्रातः क्लास चल रहा था, 3/6/1966 शुक्रवार को तीसरे पेज के आज में बात चल रही थी, है वो ही गीता, वो ही रुद्र ज्ञानी है के जिस ज्ञान यज्ञ से इस विनाश ज्वाला को प्रज्वलित किया है। देखो ये समझने की बात है ना, कि रुद्र नाम क्यों रखा है, क्योंकि रौद्र रूप धारण करते हैं। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है, बरोबर राजस्व स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसको सिर्फ पाठशाला भी नहीं कह सकते हैं, यज्ञ भी जरूर है, क्योंकि इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। इस ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना, तो इनमें ये भी है कि जब हमको बादशाही मिलती है तो फिर ये जो सारी पुरानी दुनिया है और इस पुरानी दुनिया की ये सभी जो यज्ञ हैं, वो दुनिया की यज्ञ तो छोटे होते हैं, फिर उनमें आहुति डालते हैं, बहुत ही कचरा वचरा डाल देते हैं। तो ये दुनिया में जो भी कचरा है सब भस्म हो जाएगा। ज्ञान यज्ञ में तो ब्राह्मण लोग जानते हैं, वो ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं वो जानते हैं, तो उसमें कितनी सामग्री होती है। वो ब्राह्मण उस यज्ञ में पिछाड़ी में स्वाहा करते हैं। जब यज्ञ पूरा होता है पिछाड़ी में जो आहुति देते हैं, वो रुद्र की आहुति शंकर की आहुति मानी जाती है। सब कुछ स्वाहा, तो अभी ये भी लिखा हुआ है बरोबर गीता में लिखा हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ये सभी सारी जो दुनिया पुरानी है तो सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। अभी तुम बच्चों को ये भी तो खातिरी है ना कि हम जब राजभाग ले रहे हैं तो हम कोई इस पतित दुनिया में तो नहीं आएंगे ना। हमारे लिए जरूर ये जो भी है ये सभी स्वाहा हो जाएगी, यानी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। और खत्म कैसे होती है ये भी तो तुम बच्चे जान चुके हो कि ये नेचुरल कैलमिटीज होंगी। तो ये सभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में भी ये सारा ज्ञान है, तुम गायन तो करते हो कि बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, और वो ही सृष्टि के आत्मज्ञान को जानते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि भी कहते गए कि चेता और रचना के आदिमध्यंत को हम नहीं जानते, नेति नेति कहते गए। तो तुम्हारी से भी कोई पूछेंगे तो सही ना कि वहाँ तुमको क्या प्राप्ति होती है। बोलते हैं जो ऋषि मुनि कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं, तो जो वो नहीं जानते हैं वो हम सब जानते हैं। और ये किससे जानते हैं सिवाय रचयिता के, कोई रचना के आदि मध्यंत को समझा ही नहीं सकता। तो देखो तुमको रचयिता ही समझाएंगे ना। जो रचना है वो तो कभी नहीं समझाएगी। रचना को जब तक रचयिता न समझावे कुछ भी समझ न सके। देखो कोई भी आज तक कुछ भी नहीं समझ सके हैं। जैसे जंगली जानवर हैं, उनको उल्लू चाहे जो कुछ कहो, जो उनकी चलन जानवर की है, बंदरों की है, वो ही इनकी चलन है। पर कहेंगे ये मनुष्य है इसलिए सब राजाई से वगैरह चलाते। उन जानवरों में तो कोई राजा ही नहीं होती है। भले और प्रकार से कोई कोई में होती है। देखो बाबा ने कहा समझाया था ना ये माखी की मक्खी है ना, शहद की मक्खी होती है ना, उनकी भी रानी रहती है। तो वो भी अपना राज्य चलाती है। देखो उन शहद की मक्खियों का कितना लश्कर होता है, जब रानी चली जाती है तो सारी पलटन उनके पिछाड़ी चली जाती है। और जहां वो जाकर के बैठेगी तो सब मक्खियां वहां जाकर के उस मनारे में वो मनारा इतना बड़ा ढिंगला हो जाता है। इतने बड़े ढिंगले में कितनी मक्खियां होती है। देखो उनमें कितनी एकता है। माँ के पिछाड़ी कितना मनारा जाता है। तो जानवरों में भी ऐसे होता है ना। तो ये गाया हुआ है कि बाप भी जब आते हैं तब अपने बच्चों को ऐसी रजाई देते हैं, माना अभी बाप आया है या नहीं आया है, क्या कहें, आया है। कोई कहते आया है, कोई कहता नहीं आया है। अभी तो बताया बाप जब आते हैं तो अपने बच्चों को ऐसी रजाई देते हैं। पहली अव्यक्त वाणी में बोला था भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और भी बोला ये पवित्र सहने वाले सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। शहद की मक्खियां होती हैं, उनमें भी एकता किस आधार पर होती है। पवित्रता के आधार पर एकता होती है। बोला भी है विजयमाला का आवाहन करो, तो विजयमाला की हेड कौन होगी है, जरूर रानी मक्खी होगी। वो एक रानी मक्खी उड़ेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। ये कब होता है, है? जब बाप आते हैं। कौन सा बाप है, मनुष्यों का बाप या आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप जब आते हैं तो वो रानी मक्खी भी आती है। जैसे रानी मक्खी सभी मक्खियों को ले आती है, और जाकर के दूसरे घर में बिठाती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो घराने हैं। राधा कहाँ से निकलेगी? चंद्रवंशी घराने से निकलेगी। तो अपना घराना छोड़ेगी और दूसरे घराने में आवेगी। कृष्ण को सूर्यवंशी कहा जाता है। जैसे तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, हम सब आत्माओं को साथ में ले जा करके शांति धाम में बिठाएंगे। पीछे तुम जानते हो कि फिर से ये पाठ शुरू होगा सतयुग का, देवी देवताओं का, जिन देवी देवताओं के पाठ बजाने के लिए तुम यहाँ देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो यहाँ पाना रहता है सभी गुण यहाँ धारण करने हैं। तो देखो बाप समझाते हैं कृष्ण के बारे में भी दिखलाते हैं। और ये भी दिखलाते हैं, बोलते हैं तुमको अभी इन जैसा बनना है। किन जैसा? बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा होता था तो इशारा किया इन जैसा बनना है। अभी ऐसे तो नहीं कि चैतन्य बैठ करके दिखलावे व कुछ करे, नहीं। ये चित्तादि तो अव्यक्त जड़ मूर्तियां हैं, ये सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ही नहीं जा सकती। चैतन्य में जाना तो जा सकता है ना, जानना तो ज्ञान की बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में फिर से वही सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन रहे हैं। देखो ये बच्चों के लिए एम ऑब्जेक्ट हुआ ना, और तो कोई जगह में कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं सिवाय उस राजसी राजनी विद्या के। दुनिया में तो कहते हैं भाई हम बैरिस्टर बनेंगे, हम जज बनेंगे। समझते हम फलाना बनेंगे। हर एक बात में ऐसे समझते हैं, हम राजा बनेंगे, हम काम करने वाले बनेंगे। तो वो बनाने जानने वाला उनको सिखलाते हैं, बैरिस्टी सिखलाते हैं, डॉक्टरी सिखलाते हैं, राजा बनने वाले को कौन सिखलाएगा? है? अरे डॉक्टर को डॉक्टर सिखलाता है, वकील को वकील सिखलाता है, इंजीनियर को इंजीनियर सिखलाता है, जो राजा बनने वाले उनको कौन सिखलाएगा? है? जरूर राजा ही होना चाहिए। अभी ये तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है वो होनी तो जरूर है ना, ये तो समझते हो। तीन छह छियासठ की वाणी का चौथा पेज तीसरी लाइन। बच्चे सब कोई जानते हैं ये कलयुग है, और सतयुग में तो देवताओं का राज्य था, देवताएं तो बड़े सुखी होते हैं। उस दुनिया में कलह कृषि की तो कोई बात ही नहीं है। अब ये बात तो जानते हो ना, कोई से भी पूछेंगे ये विद्वान आचार्य तो कहेंगे देवताओं का राज्य तो बहुत था, और देवताओं के राज्य में भी यही था। जो आज चल रहा है वहां भी राक्षस तो था ना, फलाना राक्षस था, बच्चे भी पैदा करते थे, तो विकार भी वहां था ही। तो लोग जो विद्वान पंडित आचार्य ऐसे कह देते, किससे भी जाकर के पूछो, विद्वान आचार्य से या कोई से भी, पर हमको ये मालूम ही नहीं है कि ये भारत बहुत पवित्र खंड था। अपवित्रता का तो नाम निशान नहीं था। देखो आज तक मंदिरों में जाकर महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता दर। तो देखो ऐसे पवित्र देवताओं के आगे जाकर के माथा भी टेकते हैं, जैसे मनुष्य पवित्र रहने वाले सन्यासियों के सामने माथा टेकते हैं, और सन्यासी कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं। क्यों क्यों टेकते हैं? पवित्रता की ताकत को झुकना पड़ता है। ये भारत में मंदिर भी बहुत बने हुए हैं यादगार, परंतु इन पंडिताचार्यों को ये विचारों को पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि आज सनातन देवी देवता धर्म जो सतयुग का था वो कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की दुनिया कैसे स्थापन हुई होगी, क्योंकि अभी तो कलयुग है। कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारामारी की दुनिया है। तो वो ख्याल में भी कोई को नहीं बैठ सकता है, बुद्धि में ही नहीं है। ये भारत जो इतना ऊंचा था वो इतना नीच कैसे बन गया। बस क्या कहते रहते हैं, अरे ये तो भारत की भागी है, ये भावी ऐसी बनी है, बनी बनाई बन रही है। क्या क्या बोलते, ये भावी है। अरे किसकी भावी है वो भी बेचारी नहीं समझते। अगर ड्रामा की भावी समझे तो फिर भी उनको समझ में आवे कि ये दुनिया एक ड्रामा है। तो ड्रामा का कोई क्रिएटर भी होगा, डायरेक्टर भी होगा। जानते नहीं है कि क्रिएटर कौन है और डायरेक्टर कौन है। कौन है क्रिएटर और कौन है पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर है, कौन? शिव बाबा डायरेक्टर है और क्रिएटर। क्रिएट करता है, क्रिएटर साकार होगा या निराकार होगा। तो बाबा ने मुरली में किसको बताया क्रिएटर? सबसे ज्यादा बड़ा ड्रामाबाज कौन है, है? सबसे ज्यादा ड्रामा कौन बनाता है? नाम लिया है ये व्यास। सबसे जास्ती शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। ये इतना मनन चिंतन मंथन के संस्कार कहाँ से लाए? व्यास ने ये इतना संस्कार मंथन के कहाँ से लाए, है? संगम युग से लाए। तो विद्वान पंडित आचार्य तो जो कुछ भी हो जाता है वो तो सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी है, प्रभु की ये भावी है। परंतु वास्तव में ये प्रभु की भावी नहीं है, अभी ये ड्रामा की भावी है। अगर कोई ड्रामा का अक्षर लेवे भी तो ड्रामा कहने से ड्रामा के तो आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। जो कोई कहते हैं ड्रामा अभी तुम सिर्फ कह देंगे भाई यहाँ ड्रामा है, ये ड्रामा बनता है ना, कहेंगे ये नया ड्रामा बना हुआ है, अखबार में पड़ा हुआ है। अच्छा क्या है ड्रामा में, पढ़ने से कुछ ड्रामा का पता पड़ेगा? जब तक कोई जा करके उस ड्रामा को देखे नहीं, अखबार में पढ़ेंगे भाई अखबार में पढ़ा हुआ है आज फलाना ड्रामा हुआ, कृष्ण चरित्र का ड्रामा हुआ, अभी बना हुआ है, देखने बिना तो कोई समझ नहीं सकेंगे। तो जाएगा देखेगा सब समझेगा कि भाई हम ड्रामा में ये सब कुछ होता है। नहीं तो न देखने से कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो तुम बच्चों को भी इस बेहद के ड्रामा का पहले कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य कहते हैं बरोबर कि बंड की हिस्ट्री जान रहा थी, ये फिरती रहती है, चक्कर फिरता है, यानी फिर से चक्कर फिरता रहता है। तो चक्कर का नाम भी लिखा हुआ है कि सत्युगते का द्वापर कलयुग, ये वेद के ड्रामा के चार सिंह है। अच्छा फिर संगम युग भी है, परंतु मनुष्यों ने उन शास्त्रों में लिख दिया है युगे युगे, यानी हर युग के बाद आता है, हर एक सतयुग के बाद जो त्रेता आता है उसका संगम युग, त्रेता के बाद द्वापर का संगम युग, द्वापर के बाद कलयुग का संगम युग, अभी इस संगम युग का कोई भी महत्व तो है ही नहीं कुछ भी। ये सतयुग त्रेता के संगम का कोई महत्व, यहाँ देखो ये संगम बनाया है ना, वो संगम का मेला होता है, नदियों का संगम होता है, कहते हैं कुंभ का मेला। तो देखो उसमें स्नान करते हैं, अभी सतयुग और त्रेता जब बदलता है तब तो कुछ भी नहीं होता है। अभी तुम जानते हो कि बरोबर सतयुग से त्रेता के राज्य सूर्यवंशी चंद्रवंशी को राज्य कैसे देते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों के ऊपर जीत पहनी। ऐसे तो नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि जब चंद्रवंशियों का राज्य होता है तो वो जो भी सूर्यवंशी राजा रानी है वो उनको बिठा करके, उनको राजभाग दे करके, तिलक दे करके, उस समय से उनको राजा राम और सीता रानी, उनका टाइटल मिल जाता है। समझते हैं भाई, अभी सीता और राम का राज्य शुरू हुआ, उनको किसने दिया? उनको सूर्यवंशियों ने दिया। यानी ट्रांसफर किया, बदली किया कि अभी तुम राज्य करो। अब ये सीन तुम लोगों को दिखलाई गई है, तुमने अच्छी तरह से देखी है कि कैसे कोई लड़ाई वड़ाई तो लगती नहीं है, पर मनुष्यों को क्या मालूम कि क्या होता है। सूर्यवंशियों के पिछाड़ी ये चंद्रवंशी कैसे राजी करते हैं, कैसे उनको राजी मिले, उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि सत्युग में सूर्यवंशियों का राज्य, त्रेता में चंद्रवंशियों का राज्य। तीन छह छियासठ की वाणी का पांचवा पेज, ऑटोमेटिकली तुम जानते हो देते भी हैं, हम ही बैठ करके उनको देते हैं। जैसे किसको राजाई दी जाती है ना, वैसे ही दी जाती है। वो सूर्यवंशी राजा रानी चंद्रवंशियों के पैर धो करके राजा ही देते हैं। गुरु गुसाई तो कोई होते ही नहीं है, बस उनको राज तिलक दे देते। अभी जानते भी हो, सूर्यवंशी भी देवता, चंद्रवंशी भी देवता, सिर्फ वो सूर्यवंशी कहलाते हैं और वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। माना ये नाम क्यों दिए गए हैं? काम के आधार पर नाम देते हैं। सूर्य की तरह काम करने वाले, सूर्य क्या काम करता है? सारे संसार को रोशनी देता है, गर्मी देता है। ऐसे नहीं कि कोई को देता है कोई को नहीं देता है, कोई फैसिलिटी करता है। तो नाम दे दिया है सूर्यवंशी, अभी जानते हो वो से तो सूर्यवंशी कहलाते हैं, वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं। लड़ाई का कोई भी नाम सुना नहीं है कि वहाँ कोई एक लड़ाई लगी, और लड़ाई किसी में लगेगी? आपस में देवी देवताओं की तो लड़ाई लग ही नहीं सकती है। नहीं, अगर लड़ाई दिखलाते हैं तो असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। तो क्या ये सतयुग की बात है? लड़ाई होती है तो सत्ययुग हुआ। जरूर सतयुग आने से पहले की बात है। सतयुग और कलयुग के संगम में असुर होते हैं, देवात्माएं भी होती हैं। अच्छा, फिर देवताओं को राज्य मिला, फिर बाद में असुर राज्य शुरू हुआ, फिर असुरों की असुरों में लड़ाई हुई। देखो ये जो भी लड़ाइयां चली आ रही है, अभी जो ये लड़ाई करते हैं, देखो ये सभी असुर हैं। क्या कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है कि नहीं है? लड़ाई लड़ते हैं आपस में कि नहीं? कौन? ब्राह्मण ही लड़ाई लड़ते हैं आपस में। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण असुर भी थे, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ क्या थे? असुर ही तो थे। तो देखो ये सभी असुर हैं। असुरों की आपस में भिन्न भिन्न प्रकार की कितनी लड़ाइयां हैं। कोई कैसे लड़ते हैं, कोई कैसे लड़ते हैं, इसको कहा जाता है आसुरी स्वभाव। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में हम सुख से रहेंगे, लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। उस सुख की दुनिया को ही सुखधाम कहा जाता है। उसमें अब सुखी और बाबा आकर के हमको दुख से निकाल सुखी करती है। ये जानते हो इस पुरानी दुनिया भर में ऐसा कोई भी साधु संत महात्मा नहीं है, बल्कि वो भी बेचारा चाहता है कि हम शांति धाम जावे। तो बाप आकर के कहते हैं, साधु नाम जिनका है उनका भी मैं उद्धार करके यहाँ से उनको फिर अपने शांति धाम में ले जाते। अभी बच्चे जानते हैं कि हम जब वहाँ मूल वतन में रहते हैं, तुम अभी जानते हैं कि हम सूर्यवंशी राजधानी की जीवात्मा हैं, ये अभी तुम जानते हो कि सूक्ष्म वतन में ये जो भी सन्यासी हैं, वो फिर जब द्वापर होता है ना, तब ये शंकराचार्य वाले आते हैं। ये निवृत्ति मार्ग वाले तब आते हैं, तब जब दुनिया द्वैतवादी हो जाती है, अभी वहां भी तो है ना, जहां स्वर्ग में हम रहते हैं, बरोबर वहां भी तो है ना, मूल वतन में भी तो सेक्शन है ना, सूर्यवंशियों का सेक्शन अलग, कहाँ मूल वतन में, और चंद्रवंशियों का सेक्शन अलग, देखो अच्छा पीछे नीचे आते हैं तो ये जो सन्यासियों की आत्माएं वो बिल्कुल अलग। तो देखो सेक्शंस बने हुए हैं ना, वैसे देखो ये झाड़ में भी सेक्शंस बने हुए हैं, फिर जब हम राज्य करते हैं तो देखो कोई नहीं है वहां बिल्कुल ही, जब हम राज्य करते हैं सतयुग में, तो पहले हमारी माला है, माला माने संगठन, फिर हमारी माला से दूसरे सब निकलते हैं, तो इसको कहा जाता है भारत प्राचीन, और भारत के ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं, जिनसे फिर बाद में ये बिरादरियां निकलती रहती है। ये नंबर बार देवी देवता धर्म की आत्माएं ही, कम से कम तर कलाओं की आत्माएं, द्वापर में आकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। तो नई नई बिरादरियां निकली ना, अनेक बिरादरियां होती है ना, इस समय में इस भारत में कितनी बिरादरियां होंगी, ये बिरादरी तो मनुष्यों से मनुष्यों की हुई है, और ये बिरादरियां जो द्वापर कलयुग में हुई हैं, वो बड़े बड़े जो धर्म स्थापक हैं उनसे निकली है। तो भी कहेंगे पढ़ी पहले यहाँ मनुष्य तो यहाँ थे ना, देवी देवताएं पीछे इस्लामी। तो बताओ अभी इस्लामी बिरादरी कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी हैं? देवी देवताओं से जरूर, मनुष्यों से मनुष्य निकलेंगे जरूर। कोई मनुष्य यहाँ से जाएगा जिसमें प्रवेश करेगा, जिससे फिर इस्लामी बिरादरी निकलेगी। कौन प्रवेश करेगा? इब्राहिम। तो तुम अभी ये जानते हो कि हमारी छोटी नंबर सेकंड बिरादरी है, फिर तुम कहेंगे ये हमारी थर्ड बिरादरी है। कौन सी हुई सेकंड नंबर बिरादरी और पहले नंबर कौन सी हुई? पहले नंबर हुई देवी देवता सनातन धर्म की बिरादरी जो सतयुग त्रेता में होती है। फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लाम धर्म की बिरादरी, फिर हमारी बौद्ध धर्म की थर्ड नंबर की बिरादरी, फिर ये क्रिश्चियन लोगों के लिए तुम कहेंगे ये हमारी फोर्थ बिरादरी है। तो इन बिरादरियों में हम सबसे ऊंचे हैं। सबसे ऊंचे सूर्यवंशी बिरादरी वाले तो देखो इसको कहा जाता है वेद की बिरादरियां। और वो है हद की बिरादरियां। कौन सी? वो जो उन्होंने ब्राह्मणों की नौकरियां दिखाई है वो हद की कुरिये हैं। ये अग्रवाल फकरवाल बहुत ही लाखों करोड़ों होंगी, और यहाँ मुख्य तुम्हारी बिरादरियां हैं चार। कौन कौन सी? देवी देवता इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन। हम पहले आते हैं। पीछे हमारे से बौद्ध बिरादरी निकलती है इस तरफ में। इस तरफ माने किस तरफ में? भारत की साइड में। फिर इस्लामी निकलती है, फिर बौद्धी निकलती है। तो अभी उससे संगम युग में तुमको ये ज्ञान हुआ है कि हम ऊंचे थे, ऊंचे बिरादरी है ऊंच कुल की। तीन छह छियासठ की वाणी का छठा पेज। हमारी इस ऊंची बिरादरी में बहुत सुख है, अथाह सुख है। क्यों है? और बिरादरियों में इतना सुख क्यों नहीं है? कोई कारण है? है हमारी जो बिरादरी है वो स्थापन करने वाला है वर प्योर। हमारा धर्म पिता कौन है? एवर प्योर है। और वो जो धर्म पिताएं हैं वो प्योरिटी में नंबर वार है। अभी हमारी वो ऊंचे से ऊंची बिरादरी नीचे गिर गई है, क्योंकि हमको ही 84 जन्म लेकर के नीचे जाना पड़ता है। और धर्म वाले तो जो अपने धर्म के पक्के हैं वो तो अपने धर्म पिता के बाद आते हैं। बाद में आने के कारण उनके 84 जन्म तो होते नहीं। इसलिए हमारी बिरादरी जो फर्स्ट थी वो अब लास्ट में आ गई है। तो जो लास्ट में आ गई है तो फिर फर्स्ट बनेगी। तो है हमारी भी बिरादरी, ऐसे नहीं है कि नहीं है, नहीं, ये तुम जानते हो कि वास्तव में हम हैं देवी देवता सनातन धर्म के। परंतु फिर पतित बनने के कारण हम सिर्फ अपन को हिंदू कहलाते हैं, नहीं तो हैं हम देवी देवता। बिरादरी हमारी वही चली आती है, परंतु पतित होने के कारण हम अपने को देवता नहीं कह सकते। देवताओं की तो पूजा की जाती है, पतित की पूजा की जाती है या पावन की जाती है। क्योंकि हम देवताओं को पूजते तो है ना, इससे सिद्ध होता है कि हम इनकी बिरादरी के हैं। ये मुरली में बोला, जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसी कुल के हैं ना। द्वापर के आज में इस्लामी किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। तो वो इस्लामी भी पहले किस कुल के थे? वो भी देवी देवताओं से जन्म लिया, फिर बाद में मोहम्मद आया, उसने सारी मूर्तियां तोड़वा दी। तब से ढेर के ढेर इस्लामी मुसलमान बन गए। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, तो उनकी बिरादरी के हर एक ऐसे जैसे सिख हैं नानक को मानते हैं, तो उसकी बिरादरी के ऐसे होता है ना। सन्यासी है शंकराचार्य की बिरादरी के, तो हम किसकी बिरादरी के हैं? हम पहली बिरादरी के, इस मनुष्य सृष्टि में पहले नंबर सतयुग में हमारी बिरादरी, हमारे से ऊंची बिरादरी कोई होती नहीं है। ये सारी मनुष्य सृष्टि में जीवात्माओं की सृष्टि में हमसे कोई बड़ी बिरादरी नहीं होती, तो हम हैं ऊंचे से ऊंचे बिरादरी वाले। इसलिए हम ऊंचे से ऊंची दुनिया स्वर्ग में आते हैं, हम ही ऊंचे से ऊंचा सुख भोगते हैं, सबसे जाती सुख हम भोगते हैं। ओम शांति।